हमारे यहाँ बास लोगों ने लफ्ज हक महर को तलाक से जोड़ दिया। मैंने खुद कहते हुए भी सुना है, दीनदार पढ़ाते हुए लोगों को भी कहे हक महर इसलिए होता है कि फिर तलाक हो गई तो चलो लड़की का कुछ बन जाए। गलत बात है, हक महर का कोई ताल्लुक नहीं है तलाक से। हाँ, अगर किसी मर्द ने नहीं दिया हुआ तो तलाक या बेवगी की सूरत में उस औरत को दिलाया जाएगा। जैसे एक मर्द के जिम्मे कर्ज है बीवी का, तो वो कर्ज उससे लिया जाएगा ना। इसी तरह अगर कोई मर्द फौत हो जाता है और उसने अपनी बीवी का हक महर अदा नहीं किया, तो विरसे के अलावा औरत हक महर भी लेगी, ले सकती है। ये किस्म का नजराना है, एक तोहफा है, गिफ्ट है। किसी को भी मिलते हैं तो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ उसको पेश करे जिससे उसको ये लगे कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई या तुम्हें आता देखकर मैं खुश हुई। तो एक बीवी को वेलकम करने का जरिया है हक महर। अगला सवाल है कितना? आप कहते हैं 3200 रुपये आठ आने, इतने ही है। आप जरा इसको पाउंड्स में करके बताइए कितने बने। 20 पेंस। आप क्या समझती हैं, आपको कोई 20 पेंस दे दे तो आप खुश हैं? ये 3200 रुपये आठ आने की क्या हैसियत है? ये भी बस एक हमारे मुसलमानों का मुगालता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपकी दूसरी बीवियों से जब हम अल्लाह के नबी की बीवियों के हक महर की बात सुनते हैं, तो पता क्या चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर बीवी का हक महर रखा। कुछ का तो सिर्फ सत्तू होते थे, किसी का सिर्फ खजूरें होती थी, और एक बीवी का 500 दिरहम भी हुए। अल्लाह के नबी के एक निकाह का हक महर निजाशी ने भी दिया था, क्योंकि वो निकाह आपका हबशा में हुआ, आप मक्का में थे, यानी वो निकाह गायब निकाह जिसको आप आज टेलीफोनिक निकाह के उसकी एक दलील बन गया बाद में, ठीक है। तो हक महर कितना हो, मर्द की कमाई के मुताबिक। हजारों कमाता है, हजारों में दे दीजिए, लाखों कमाता है तो लाखों में दे दें, 100 कमाता है तो 100 दे दें। हक महर का कोई ताल्लुक स्टेटस से नहीं है, श्योरिटीज नहीं है। लड़की वाले हक महर मांगे जी इतना लिखाएं, नहीं मांग सकते। अगली चीज नोट कर लें कि हक महर लड़की के लिए है, उसके माँ बाप के लिए नहीं है। अरब लोग और कुछ पठान लोग आज भी ऐसा करते हैं कि जो हक महर मिलता है ना लड़की का, वो खुद रख लेते हैं। जिसको आज हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि फुला अपनी बेटियां बेचते हैं, ठीक है। तो हक महर का माल वो पैसे भी हो सकते हैं, जेवर भी हो सकता है, जायदाद भी हो सकती है। फौरन भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। फौरन देंगे तो उसको कहेंगे मुअज्जल, महरे मुअज्जल, अदा कर दिया, उजलत से, अजला से भी है। और गैर मुअज्जल के जिक्र कर दिया है, बाद में देंगे, कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगला इस बारे में मसला लिख लें, लड़का खुद दे सकता है, बहुत अच्छी बात है, बाप देना चाहे उसकी तरफ से दे सकता है, नो प्रॉब्लम, देगा। जो चीज़ औरत को मिल गई हक महर में, वो उसे वापस नहीं ले सकते आप। ये सारी बातें इस संबंध में यहाँ एक सूरत बता दी, फइन तिबना लकुम अन शय्इन मिन्हु नफ्सन। हाँ, बीवी अपनी खुशी से मना कर दे, मुझे नहीं रखना, आप रखें, मिलके इस्तेमाल कर लेंगे, अच्छे दिनों की यादें हैं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। अब आप सब सोच में पड़ गए होंगे कि हमने पता नहीं लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ, आज ही जाके मुतालबा ना कर दीजिएगा, सूरत शुरू हुई है। तो खुशी से या तो माफ़ कर दें, कोई फोर्स नहीं कर सकता, और कोई ज़बरदस्ती नहीं। और अगर कोई नहीं लेती औरत, तो मर्द को बता दिया कि नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जिस तरह से रखा है उसको इस तरह से रख लो। फकुलूहु हनीयन मरिय। हनीयन लफ्ज़ को देखिए, हनीयन ऐसे ही है जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं इंजॉइंगली, खुशी खुशी खाओ, इंजॉय इट। और मरिया कहते हैं वो चीज़ जो हजम होकर जिस्म का हिस्सा बन जाए, यानी फिर तुम खा सकते हो, यू कैन ईट इट, डोंट वरी। जैसे आप किसी को कोई पैसा चीज़ कोई दे और अगला थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील करे, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं कीप इट, मैं खुशी से कह रही हूँ, ठीक है। तो हनीयन लजीज चीज़ जो तबीयत को अच्छी लगे, और मरियन हजम होकर बदन का हिस्सा बनने वाली चीज़, मुहावरा है ये असल में अरबी का, खुशी खुशी खाओ। तिबना का लफ्ज़ में नून क्यों आया, मुअन्नस की वजह से है, ठीक है। औरत माफ़ करेगी तो तुम ले सकते हो। अब मेहर की रकम औरत के पास है, अपनी खुशी से खर्च कर सकती है, किसी को दे दे, शौहर को ही वापस दे दे, कोई बड़ी बात नहीं। और आपने वो वाक्य बारहा सुना होगा कि एक मर्द का निकाह अल्लाह के नबी ने कुरान की चंद सूरतों के टीच करने की बेस पे भी रख दिया। इतना आसान था निकाह, मर्द भी आ जाता था, कोई अल्लाह के नबी कोई औरत है कोई लड़की है तो मैं निकाह करना चाहता हूँ। इसी तरह बाज़ औरतें आके बताती थी कि अल्लाह के नबी हमारा कोई है नहीं, अगर आप हमारे लिए ढूंढने तो बता दें। स्पॉन्टेनियसली उसी नशिस्त में शादियां हो जाती थी। आपने कहा अच्छा तुम उससे करना चाहती हो, उसने कहा ठीक है, तुम करना चाहते हो ठीक है कुछ कुछ नहीं, जो देख के लाओ। वो गए साहबी, ढूंढ के आए, कुछ नहीं मिला। कहा कुछ नहीं, कहा कोई लोहे की अंगूठी मिली, वो भी नहीं है। कहा फिर तुम्हारा कैसे निकाह करूं, नहीं हो सकता। जाने लगे तो कहा मा समा का मिनल कुरान, ये बताओ तुम्हारे पास कुरान में से क्या है। अल्लाह के नबी फुला 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 सूरते याद आया। कहा अच्छा याद है, तो जाओ ये इनको सिखा दो और उस सिखाने के मुआवजे में ये तुम्हारी बीवी है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया का हक महर, उनकी आजादी रखा था, आजाद किया, हक महर उसमें चला गया, क्योंकि बिकते थे ना उस दौर में। तो ये सारे हालात जो है वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ तरह से चीजें जो है वो आती रहती हैं। पसंदीदा क्या है, कम हो। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो औरत मर्द के लिए बाबरकत है जिसका हसूल आसान हो, और जिसका जोड़ा ही 3 लाख रुपए का आता हो वो आसान है कि मुश्किल है। मुश्किल होगी ना। आज शादियों में हमने इतना कुछ कर लिया कि वो शादी जो है वो शादी नहीं रही, कुछ और बन गया। आयत 5 को देखिए कि वला तूतु सुफहा अमवालकुमुल्लती जालल्लाहुलकुम कियामा, और मत पकड़ाओ ना समझ लोगों को अपने वो माल जिनको अल्लाह ने तुम्हारे गुजर का जरिया बनाया है। वरजुकूहुम फीहा, खिलाओ उनको उसमें से, वक्सूहुम पहनाओ भी उनको, वकूलू लहुम कौलम मारूफा, और उनको मारूफ बात करो। फिर कब दो इनको इनके माल, अगली आयत साथ ही चलेगी, आयत 6। वब्तलुल्यतामा हत्ता इज़ा बलगुन्निकाह, और यतीमों की जांच परख करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं, यानी प्यूबर्टी पे आ जाए। फिर फाइन आनस तुम मिनहुम रुश्ता, फिर अगर तुम इनके अंदर समझ बूझ पाओ, यानी होश समझ आ गई है, महसूस कर लो कि बादशोर हो गए, फदफाउ इलैहिम अमवालहुम, तो इनके माल इनके हवाले कर दो। हाँ देखो क्या ना करना, वला ताकुलूहा इसराफुम व बिदारन, और तुम इसे हड़प करने के लिए इसराफ और जल्दबाजी से न खाओ, इस डर से कहीं यकबरू के वो बड़े हो जाएं। क्या यतीम को पालने का कुछ मुआवजा ले सकते हैं? तो उसका जवाब, वमन का न गनीयन फलयस्ताफिफ, जो गनी है पैसे वाला है अफोर्ड कर सकता है, उसको तो चाहिए कि बचे ना ले पैसे। हाँ वमन का न फकीरन फलयाकुल बिल मारूफ, जो मोहताज है खुद अपने घर में ही खाना कोई नहीं दूसरे को क्या देगा, तो फिर दस्तूर के मुताबिक वो भी यतीम के माल में से खा सकता है, लेकिन जब बड़ा हो जाए उसको उसके पैसे वापस करने हैं तो क्या करो। फइज़ा दफा तुम इलैहिम अमवालहुम, फिर जब तुम इनके माल इनके हवाले कर दो, फअशहिदु अलैहिम, तो इस पर गवाह ठहरा लो, और अगर गवाह ठहराने के बावजूद भी मामला बिगड़े तो याद रखो, वकफा बिल्लाही हसीबा, और अल्लाह काफी है हिसाब लेने के लिए। इन दो आयात में अल्लाह सुबहाना ताला ने माल की अहमियत को वाज़े किया। अगर आप इन आयतों का टॉपिक लिखना चाहें ना, तो आप ये लिख सकते हैं कि माल ज़ाया ना करो। बात वही है जो पीछे चल रही थी कि यतीमों को उनके माल जब वापस करो तो गवाह बना लो, और उनको उनके माल जल्दी जल्दी ना खाओ ताकि बड़े होने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। लेकिन यहाँ लफ्ज़ सुफहा से मुराद कौन लोग हैं, जो माली मामलात में कमज़ोर हो। बच्चे, उनको भी नहीं पता, छोटे बच्चे हैं, औरतें, बाज़ दफ़ा ख़वातीन बहुत ज़्यादा लाउबाली होती हैं, पैसे की हिफाजत नहीं करती। तो यहाँ बता दिया कि हाथ में पैसे देने की बजाय उनको ग्रोसरी ला दो, पॉकेट मनी दे दो, उनको कपड़े ला दो मौसम के गर्म सर्द, ज़रूरियात पूरी कर दो, पैसा ना दो। बेसिकली इस आयत में माल की अहमियत की जिक्र है। हमारे यहाँ माल के बारे में दो एक्सट्रीम्स हैं। एक क्या है कि ये बहुत बुरा है, इसको बुरा कहो, हालांकि माल बुरा कैसे, आपके और मेरे पास पैसे ना होते तो क्या आज हम यहाँ मौजूद होते, पैसे ना होते तो क्या गैस गाड़ी में डलती, पेट्रोल डलता, नहीं डलता ना, हमारे पास पैसे ना होते हम दूध ना खरीद सकते तो क्या चाय पी के आते, नहीं कर सकते थे, गर्मी सर्दी मोटे पतले पहन सकते थे, तो माल जरूरत है। इस्लाम माल को बुरा नहीं कहता बल्कि इसको खैर कहा, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई फौत हो और खैर छोड़े यानी माल छोड़े, और आगे सूरत आदियात में आते हैं इन्नल इंसान अले खुब्बिल खैरी लशदीद, कि बेशक इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा शदीद है। तो माल जरूरत का है, जरूरियातें जिंदगी पे खर्च करना चाहिए, नहीं खर्च करेगा कोई मर्द तो शुख कहलाएगा, बखील है वो। कंजूस मर्द बिल्कुल अच्छे नहीं होते, जिनका हाथ खुले ही ना वो बीवी को क्या देंगे। आपको था कि एक मौके पे अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई, मशवरा किया, अल्लाह के नबी फलां साहबी भी हैं और वो भी हैं, दोनों ने मुझे निकाह का पैगाम दिया, आपका क्या मशवरा है। आपने कहा फलां उनकी आंख में भेंगापन है, मतलब ये था कि कोई और देख लो, और फलां उनका हाथ तंग है, कंजूस है। एक मौके पे एक मर्द का कहा कि वो औरतों को मारते हैं, मशवरा दे रहे हैं आप अल्लाह के नबी। तो आप देखिए कि जिन मर्दों के अंदर औरत पे खर्च करने का हाथ नहीं है, या अपनी जात से इतने कंजूस हैं कि माल है भी तो खर्च नहीं करते, उनको बेटियां ना दें। तंग हाथ वालों के दिल भी तंग होते हैं अमूमन, एक अलग बात है कि गिना है दिल में मोहब्बत ही नहीं माल की और बात है, लेकिन मर्द हमेशा खर्च करते हुए अच्छे लगते हैं, मर्दों के हाथ हमेशा भरे हुए होते हैं, जब वो घरों में आते हैं तो उनके पास सामान होता है, ये औरत के लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से ऑनर है। लेकिन यहाँ ये बताया गया कि वो बच्चे हों छोटे या औरतें हों, माल को जाया ना करो, जब माल को वेस्ट किया जाता है तो याद रखिए कि उससे नकदरी होती है, खाने से कभी कम नहीं होता, जाया करने से कम होता है, पहनने से कभी कम नहीं होगा, लेकिन पहन के उसके अंदर जो और किस्म की खराबियां होती उससे गड़बड़ हो जाती है। तो अल्लाह ताला इन आयात में जो बात हमें मैसेज देते हैं वो यही है कि जब किसी का कोई माल तुम्हारे पास हो तो उसको मुनासिब वक्त पे हैंड आउट करो, उसके हवाले कर दो, और उसके माल को मिसयूज़ ना करो ताकि वो बाद में ख़राब हो के और उस तक पहुँचे ही ना, और पैसे को तुम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो। ये है पूरी आयत का खुलासा। बस लोगों ने यह लफ्ज़ सफीहन के नीचे औरतें लिख दिया तर्जमे में और औरतें नाराज़ हो गईं, हालांकि आप देखिए कि माली मामलात में औरत का हिसाब मर्दों से कम ही होता है, इल्ला माशाल्लाह, कुछ इस्तिस्नाई सूरतें हैं, कुछ औरतें माशाल्लाह बहुत इंटेलेक्चुअल होती हैं, उनका मैथ बहुत अच्छा होता है, वो उंगलियों पे जमा तफरीक करके बता देती हैं, बस मर्द जो होते हैं वो नहीं कर पाते, तो बिल्कुल इसी तरह से एक्सेप्शंस और हैं, लेकिन अमूमन आपने देखा होगा कि मर्द माली मामलात में ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, गलत है कि सही, पैसे वैसे औरतों के पास ज़्यादा होते हैं लेकिन मर्दों को पता नहीं होता, ऐसे ही है, अक्सर बीवियां कहती हैं जहर खाने को पैसे नहीं है, फिर निकल आते हैं, छुपाए होते हैं औरतों ने पैसे, कमाते मर्द ज्यादा है लेकिन औरतें जोड़ती ज्यादा है, और साथ ही ये भी कह देती हैं कोई नहीं, और फिर जब निकल आते हैं तो वो कहते हैं ये किधर, ये बस आखिरी थैली थी, वो फिर निकल आती है कहीं और से, है ना, कई घरों की ये कहानी है। तो झूठ ना बोले, अच्छे ताल्लुकात रखें, कैसे मर्द और बीवी घर का खर्च चलाए, बाहमी रजामंदी से, आप अपने शौहर के लिए ले, शौहर आपके लिए ले, आप कहेंगे ये पता नहीं किस रोमांटिक माहौल की बातें करती हैं, हमें तो ये मिलता ही नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जब आप किसी का दिल ले लेते हैं ना तो उसकी जेब भी आपको मिल जाएगी, ये हकीकत है। सवाल पैदा होता है एक मर्द है वो नहीं देता, ज़रूरियात का भी नहीं देता या तरसा के देता है, तो उसके ऊपर हमारे पास मिसाल मौजूद है हिंदा की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, ये हज़रत अबू सुफियान की बीवी थी, कहने लगी कि अबू सुफियान कंजूस हैं, तंग हाथ के नहीं देते, तो क्या मैं अपनी ज़रूरियात के लिए उनके जेब में से ले सकती हूँ बगैर बताए। तो फिर आपने कहा कि बस उतना लो जितनी तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है, तो एतमाद पैदा कर ले फिर सब कुछ आपका है। बाज़ मर्द शकी मिजाज होते हैं, एक दफ़ा उनका शक दूर कर दें, आप उनको एहसास दिला दें कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत सारे निजी मामले हैं, लेकिन यहाँ मौजू बहरहाल जो है वो यही है कि जो लोग पैसे की टेक केयर नहीं कर सकते उनको पैसा ना दो, चीज़ ले दो। इसी तरह बाज़ फ़कीर होते हैं, पैसे ना दें आप उनको, उनको कोई सेब दे दें, उनको कोई कपड़ा दे दें, कोई ऐसी चीज़ दे दें जो उनके इस्तेमाल की हो। इसी तरह घरों में काम करने वाली मासियाँ होती हैं, जी बेटी की शादी है। अब बेटी की शादी का सुन के तो हम सारी ज़कात उनको दे देते हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमारी ज़कात के साथ क्या हुआ है। और वो उससे फ्रिज और VCR और बारातों के खाने और मूवियाँ बना के शादियाँ करते हैं। नहीं, चीज़ें ले दें, कोई घर की ज़रूरत की चीज़ है, कोई ऐसी जो आपको लगता है बाद में उनको काम आएगी, तो फिर दे दीजिए। अदरवाइज बहुत कम लोग पैसे को सही इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी बात सुना के इंशाल्लाह आज के सबक को पूरा करूँगी। बहुत दफ़ा सुनाई हुई है लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो वाक्या। एक क्राइटेरियन है कि क्या मैं माली मामलात में ठीक बैलेंस्ड हूँ। तो एक शख्स नबी सल्लम के पास आया, ज़रूरतमंद था। इत्तफाक देखिए कि अल्लाह के नबी के पास भी उस वक्त कुछ नहीं था। आप ऐसे मौक़ों पे क्या करते? किसी दूसरे की तरफ रेफ़र कर देते। आपने उस शख्स को कहा कि वहाँ चले जाओ, वो उस्मान का घर है, उनसे जाके जिक्र करो, ज़रूरतमंद हो, शायद वो कुछ हो तो दे दे। जब वो शख्स गए, अभी दूर ही थे, तो घर के अंदर से शौहर और बीवी के झगड़े की आवाज़ें आ रही हैं। गौर किया तो पता चला कि अब हजरत उस्मान अपनी बीवी से नाराज़ हो रहे थे कि जब एक चिराग जलाकर गुजारा हो सकता था तो दो क्यों जलाए। आज की जुबान में जब एक बल्ब से गुजारा होता है तो दो क्यों जलाए। इनकी जरूरत ही नहीं हुई कि जो शख्स इतना कंजूस है कि एक फालतू बल्ब जलाने पे बीवी से नाराज़ है तो मुझे क्या देगा वापिस आके बिन मांगे। क्या हुआ भाई? नहीं बस, अल्लाह के नबी मेरा ख्याल है वो नहीं देंगे। कहा नहीं, जाओ मांगो। अब ये दोबारा गए, नॉक किया, जो भी किया, जी अल्लाह के नबी ने भेजा है ज़रूरतमंद। अच्छा ज़रूरतमंद तो ठहरो, मैं आता हूँ। अंदर गए, अशरफियों की थैली, गोल्ड कॉइन्स। अब वो शख्स ना रह सका, कहने लगा अभी थोड़ी देर पहले तो बीवी से इतना लड़ रहे थे, अब क्या हुआ? कहा वो चिराग मेरी ज़ात पे लगना था, कल मुझे उसका हिसाब देना था, और ये थैली मैं अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ। ये है एक सिंपल सा क्राइटेरिया, अपनी जात पे कितनी खुशी से लगाती हूँ और दूसरों पे कितना लगाती हूँ। हम सब अपने ऊपर सोचें। बस लोगों का हाथ बहुत खुला होता है, जाया भी बहुत करते हैं। एक चीज़ है, दूसरी खरीद ली, ला ला किलमारियाँ भरी होती हैं। देखिए एक तो ये कि आप हर वक्त इसी तंग दू में कि ये है ये नहीं, इस रंग का जूता नहीं, इसका पर्स नहीं, इसकी चादर नहीं, ये नहीं वो नहीं, दिमाग किधर जाएगा? नमाजों में कि उन चीज़ों में? फिर उनको इस्तेमाल करने का भी कोई शौक नहीं होता, हमारी चीज़ें सिर्फ अलमारियों में सजी रहती हैं। एक सूरत है कि आपको मांगते भी नहीं, आपको ज़रूरत भी नहीं, अल्लाह ही आपको इस तरह से दिलवा देता है, तो अगर आप उसको ज़रूरत पूरी करके दूसरों को बढ़ा देते हैं, बहुत फ़र्क है। तो फजूल खर्ची और माल का ज़ियाँ करना ये इंसान के लिए बहुत हसारे का ज़रिया है, और बचपन से बच्चों को इसकी आदत डालें। एक कज़न थी मेरी, एक दफ़ा उसने मेरे सामने कावा बना रही थी, तो जैसे वो इलायचियाँ उसने अपने हाथ पे डाली, तो केयरलेसली दो चार डाली, एक इलायची पता नहीं गिर गई या उसने फेंक दी, मुझे नहीं पता, बाहर इलायची उसने केयर नहीं की, मेरा दिल कट गया। मैंने उसके सामने वहाँ से नीचे से पकड़ी, कहती नहीं नहीं ये ख़राब होगी, इसको फेंक दे। तो मैंने अपनी ज़ुबान में उस इलायची से ही बातें की कि तेरा नसीब कहाँ, किसान ने बीज डाला, तुझे मिट्टी में डाला, गोड्डी की, इतनी मेहनत की, फिर पौधा लगा, फिर उगी, फिर तू सूखी, फिर तुझे उतारा, फिर पैक हुई एक जगह आई दूसरी, फिर इधर, और आज तू बिन में चली गई। वो रोने लग, ऐसी कुछ बात होगी उस वक्त, कहती मैंने कभी सोचा भी नहीं, मैंने कहा इस इलायची का एक ही नसीब था, इतने मरलों से गुजर के बिन में ही जाना है, तो पहले ही दिन ये बिन में चली जाती। तो यही मेयार है, जब घर में ग्रोसरी आए पहले ही सोच लें कितनी बिन में जानी है और कितनी खानी है। चावल धोती हैं औरतें, बेशतर हिस्सा बिन में धोते हुए, आलू काटे, सब्जी काटी, एक तो वैसे देखिए विटामिन्स लूज हो जाते हैं, आपको था कि छिलकों के साथ ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, हम अंदर का वो फुकला माल खा लेते हैं और छिलके फेंक देते हैं। खुद भी आदत डालें, बच्चों को भी, कि चीज़ ज़ाया नहीं करनी। एक शख्स था, तो ऐसी कहावत है कि लोगों को बड़ा उसके ऊपर मलाल आता था कि इसके पास पैसे क्यों इतने रहते हैं, कम नहीं होते? तो उसको कहा जाओ उसके साथ देख लो जाके क्या करता है। तो वो शख्स था, तो वो घोड़े पे या ऊंट पे बैठ के कुछ खा रहा था, तो वो खाते खाते कोई एक थोड़ी सी लुकमा गिर गया, घोड़े से उतरा और नीचे से उठा के उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया। उसने कहा इसलिए तेरा रिस्क कम नहीं होता क्योंकि तू जाया नहीं करता। कभी रिस्क कम नहीं होगा अगर हम उसकी केयर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا